जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज, भौतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों की भांति जलवायु भी स्थिर न होकर उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। किंतु जलवायु में होने वाले परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। विश्व के प्रत्येक भाग में जलवायु की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष, दशक अथवा शताब्दी एक दूसरे से भिन्न होती है। कुछ दशकों पूर्व जलवायु परिवर्तन की संकल्पना का मात्र शैक्षिक महत्व समझा जाता था, किंतु विगत कुछ दशकों पूर्व वैज्ञानिकों ने जलवायु में होने वाले अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक परिवर्तनों को महत्व देना प्रारंभ किया और इस संबंध में अनेक महत्वपूर्ण शोध कार्य एवं अनुसंधान होने लगे। आज जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के प्रति साधारण लोगों में तथा प्रशासनिक स्तर पर अत्यधिक जागरूकता दिखाई पड़ती है। इसमें अब लेश मात्र संदेह नहीं रह गया कि सुदूर अतीत में जलवायु में बहुत बड़े परिवर्तन हो चुके हैं और भविष्य में ऐसे परिवर्तन होने की विशाल संभावनाएं पाई जाती हैं। जीवन के हर पहलू पर जलवायु का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है, इससे हम भली भांति परिचित हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि अतीत में भी जलवायु के द्वारा धरातल पर उपस्थित प्रत्येक जीवित वस्तु प्रभावित होती रहेगी और भविष्य में भी प्रभावित होती रहेगी। जलवायु में होने वाले परिवर्तन के साथ वनस्पतियां, पशु पक्षी तथा मनुष्य सभी में परिवर्तन होता है। आज यह एक सत्य है कि सभी जीवधारी जलवायु के निश्चित एवं सीमित दशाओं में अधिकतम विकास कर सकते हैं। जब कभी जलवायु के विभिन्न तत्वों में प्रसामान्य नॉर्मल से अत्यधिक विचलन हो जाता है तो यह विभिन्न प्रजातियों के विनाश का कारण बन जाता है। प्रस्तुत अध्याय में सुदूर अतीत में पाई जाने वाली जलवायु की दशाओं के संक्षेप में विवेचन करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों द्वारा जलवायु में हुए परिवर्तनों की व्याख्या एवं उनका परीक्षण भी किया गया है। अंत में उन सभी सिद्धांतों का पुनरावलोकन भी किया गया है जिनका प्रतिपादन जलवायु परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करने के लिए किया गया है। पूरा जलवायु की पुनर्कल्पना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट क्लाइमेट्स, जलवायु के विभिन्न तत्वों के यांत्रिक अभिलेख, इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स केवल विगत 100 वर्षों की अवधि के लिए आज हमें उपलब्ध हैं। इसीलिए केवल अप्रत्यक्ष साक्ष्यों, इनडायरेक्ट एविडेंस के द्वारा ही अतीत के जलवायु की कल्पना की जा सकती है। भूगर्भ विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भूभौतिकी, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ऐतिहासिक अभिलेख तथा अनेक अन्य संबंधित विज्ञानों की उपलब्धि पर ही उपयुक्त साक्ष्य आधारित हैं। जलवायु के ऐसे दीर्घकालिक परिवर्तनों, सेकुलर वेरिएशन के लिए जिनके लिए करोड़ों वर्षों की अवधि अपेक्षित होती है, पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के जीवाश्म अत्यधिक महत्वपूर्ण सूत्रों के कार्य करते हैं। इनके अश्मीभूत अवशेषों से पूरा जलवायु के विभिन्न तत्वों के महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। इनके द्वारा सुदूर भूवैज्ञानिक अतीत में जलवायु की विशिष्ट दशाओं के क्षेत्रीय विस्तार एवं उनकी अवधि का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में पाए गए उष्णकटिबंधी दरियाई घोड़े हिप्पोपोटामस की हड्डियों तथा दांतों के अश्मीभूत अवशेषों से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि आज से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व वहाँ की जलवायु ठीक उसी प्रकार की रही होगी जैसा कि आज उष्णकटिबंधीय पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, जहाँ उपयुक्त विशालकाय जीव देखे जाते हैं। इसी प्रकार मैसाचुसेट में औषधीय शैलों से प्राप्त आर्मेरिया साइबेरिका के अश्मीभूत पराग फॉसिलाइज्ड पोलन से, जो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक से 12,000 वर्ष पुराने अनुमानित किए गए हैं, इस बात के निश्चित संकेत मिलते हैं कि उन दिनों वहाँ पर ऐसी जलवायु रही होगी जैसी कि वर्तमान काल में उत्तरी कनाडा में पाई जाती है। जीवाश्मों के अतिरिक्त ऐसे अन्य बहुत से भूवैज्ञानिक साक्ष्य हैं जिनकी सहायता से अतीत की जलवायु का चित्रण किया जा सकता है। साइबेरिया तथा अंटार्कटिका जैसे अत्यधिक शीतल भूखंडों में कोयले की अपार संचित राशि, अफ्रीका जैसे उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों पर हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां तथा पृथ्वी के आर्द्र प्रदेशों में बालुका स्तूपों, सैंड ड्यून्स के दृश्यांत, आउटक्रॉप्स आदि पूरा जलवायु दशाओं के सूचक हैं। किंतु स्मरण रहे कि अश्मीभूत अवशेषों, फॉसिलाइज्ड रिमेन्स एवं अन्य प्रकार के भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के द्वारा जलवायु के अल्पकालिक परिवर्तनों का पता नहीं लगाया जा सकता है। पूरा जलवायु का पता लगाने की अन्य तकनीक महासागरों के नितल पर पाए जाने वाले निक्षेपों, ओशन फ्लोर्स डिपॉजिट्स का अध्ययन तथा ऑक्सीजन आइसोटोप का विश्लेषण है। इन दोनों प्रकार की तकनीकों को अभी हाल ही में विकसित किया गया है। इन तकनीकों के द्वारा अतीत में तापमान के घटबढ़ फ्लक्चुएशन का पता लगाया जा सकता है। महासागरों के नितल पर पाई जाने वाली निक्षेपों में प्रायः समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन जीवों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उनकी संख्या तथा किस्मों में तापमान में परिवर्तन के अनुसार बदलाव होता रहता है। इस तकनीक के द्वारा अपेक्षाकृत कम अवधि अर्थात सैकड़ों हजारों वर्षों पूर्व की जलवायु का पता लगाने में सहायता मिलती है। ऑक्सीजन आइसोटोप विश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन के दो आइसोटोपों के अनुपात का मापन करके हिमानी सक्रियता के काल को निर्धारित किया जाता है। अधिक वृष्टि के कारण गुरुतर आइसोटोप हैवियर आइसोटोप्स का अधिक संकेंद्रण होता है, क्योंकि समुद्र की सतह से हल्के आइसोटोप सुगमतापूर्वक वाष्पित हो जाते हैं। इसी प्रकार समुद्र के जल में गुरुतर आइसोटोपों में के अधिक संकेंद्रण से विस्तृत हिमानी सक्रियता का बोध होता है। इसके विपरीत ऑक्सीजन 18 आइसोटोप की मात्रा में अत्यधिक कमी से उष्ण अंतर हिमकाल का संकेत मिलता है। महासागरीय निक्षेपों में गढ़े हुए सूक्ष्म जीवों की बाहरी खोलों में आइसोटोपों के अनुपात का मापन किया जा सकता है। इस आइसोटोप तकनीक का प्रयोग हिमचादरों के क्रोड विश्लेषण कोर एनालिसिस में भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में आइसोटोप अनुपात में भिन्नता केवल तापमान में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न होती है। जब कभी अधिक गर्म जलवायु का युग आता है, तब ऑक्सीजन 18 आइसोटोप की अधिक मात्रा का वाष्पन होता है। इसके विपरीत ठंडी जलवायु की अवधि में समुद्र के जल में गुरुतर आइसोटोप में निश्चित रूप से कमी पाई जाती है। पूरा जलवायु का पता लगाने के लिए एक अन्य तकनीक है, जिसके अंतर्गत वृक्ष वलयों, ट्री रिंग्स के वार्षिक विकास का विश्लेषण किया जाता है। वास्तव में इस तकनीक से स्थानीय जलवायु के इतिहास पर प्रकाश डाला जाता है। इस प्रकार से स्थानीय जलवायु की प्राचीन दशाओं की खोज करने में पुरानी ख्यात पैलियोसोल्स अर्थात नीचे दबी हुई मृदा से पर्याप्त सहायता मिलती है। ऐतिहासिक अभिलेखों में बाढ़, सूखा, प्रचंड तूफान तथा अन्य मौसमी उपद्रवों की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार बड़े पैमाने पर जनसंख्या प्रवास माइग्रेशन जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को होता है तथा उगाई जाने वाली फसलों की प्रकृति आदि अनेक सूचनाएं हमें ऐतिहासिक अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक अभिलेखों से भी अतीत ऐतिहासिक काल की जलवायु का पता लगाने में बड़ी सहायता मिलती है। ऊपर बताई गई विभिन्न तकनीकों के अनुप्रयोग से यह सिद्ध हो चुका है कि जलवायु में होने वाले परिवर्तनों की गति कभी तीव्र तो कभी मंद हुआ करती है। इन परिवर्तनों की गति की दिशा में भिन्नता के कारण यह जान पाना अत्यधिक कठिन होता है कि अतीत के किस कालखंड के आंकड़ों से भावी जलवायु का संकेत मिलता है। चतुर्थ महाकल्प का हिमयुग क्वार्टरनरी आइस एज। यद्यपि प्रत्येक भूवैज्ञानिक युग में जलवायु परिवर्तन की संभावनाएं पाई जाती हैं, किंतु प्रस्तुत अध्याय में चतुर्थ महाकल्प अथवा प्लिस्टोसीन युग में हुए जलवायु परिवर्तनों की विवेचना की गई है। इस तथाकथित हिमयुग में जलवायु में महान परिवर्तन हुए। इस युग में कम से कम चार हिमानी कल्प ग्लेशियल पीरियड्स हुए, जिनमें विशाल बर्फ की चादरें उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया महाद्वीपों के उत्तरी भागों में निर्मित हुई और चारों ओर उनका प्रसार हुआ। इन हिम चादरों की उत्पत्ति महाद्वीपों में स्थित भिन्न भिन्न केंद्रों से हुई। उत्तरी अमेरिका में हडसन की खाड़ी के निकटवर्ती केंद्रों से हिमानी चारों ओर फैल गए और पूर्वी कनाडा के अधिकांश भाग न्यू इंग्लैंड मध्य पश्चिम के बहुत से भाग लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी हिम की परत के नीचे दब गए। हिमानी के अन्य केंद्र कनाडा के राजकीय पर्वत तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित पर्वतमालाओं में स्थित थे। इन केंद्रों से बाहर की ओर निकलने वाली हिमानी की मोटी चादरों से अलास्का, पश्चिमी कनाडा, वाशिंगटन, इडायो तथा मोंटाना आदि राज्य ढक गए। दूसरी ओर स्कैंडिनेविया तथा आल्पस पर्वत यूरोपीय हिमानी के केंद्र स्थल थे। स्कॉटलैंड तथा नॉर्वे एवं स्वीडन में स्थित केंद्रों से फैले हुए हिमानी का आवरण ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क तथा उत्तरी जर्मनी के कुछ भागों पर प्रसारित था। इन बड़े केंद्रों के अतिरिक्त आल्पस पर्वत पर निर्मित हिमटोप से स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली तथा जर्मनी ढके हुए थे। हिमानी के अन्य लघु केंद्र स्पिट्सबर्जन, आइसलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी इंग्लैंड, पेरिनीज, काकेशिया की पर्वत मेखला, हिमालय तथा मध्य एशिया के पर्वतों पर स्थित थे। दक्षिणी गोलार्ध में हिमानी की छोटी छोटी चादरें अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में विकसित थीं। इस युग में भूमध्य रेखी अफ्रीका के ऊंचे पर्वत तथा न्यूगिनी भी हिमानी एवं हिमचादरों से आवृत थे। इस हिमयुग में स्थल भाग के लगभग 13 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र पर हिमानी का नियंत्रण था। आज ये सभी स्थलाखंड हिमानी से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। हिम से ढके हुए संपूर्ण स्थलखंडों में अंटार्कटिका का 5 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का 4.5 मिलियन वर्ग मील, यूरोप का 1.2 मिलियन वर्ग मील तथा उतना ही वर्ग मील क्षेत्र एशिया का तथा ग्रीनलैंड का 8 लाख वर्ग मील से अधिक क्षेत्र हिमानी के नियंत्रण में था। वर्तमान काल में 6 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में हिम पाया जाता है। स्थलीय हिम चादरों के अतिरिक्त उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर के कुछ भाग में हिम चादरों के बड़े बड़े खंड तैरते रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के 10% क्षेत्र पर हिम का साम्राज्य स्थापित था। इसके फलस्वरूप आज की तुलना में समुद्र तल हिम युग से लगभग 260 फीट नीचा रहा होगा। अधिक वृष्टि के काल, प्लूवियल पीरियड्स, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में हिम युग में वर्षा की मात्रा का अंतर हिम युगों की अपेक्षा अधिक होना अनुमानित है। इसी के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रेट बेसिन की झीलों का इतना अधिक विस्तार हो गया था कि उनके द्वारा अंतःस्थलीय सागर बन गया था। पूर्वी अफ्रीका में पाई जाने वाली झीलों की श्रृंखला का सहसंबंध अल्पाइन हिमानी की विभिन्न अवस्थाओं से माना जाता है। इसी श्रृंखला की कफुआन झील का निर्माण गुंज तथा मेंडल हिमकालों में हुआ, जबकि कमेसियन झील का संबंध रिस तथा गैम्बियम का संबंध वर्म हिमकाल से था। प्लूवियल काल के बीच बीच में अंतर्वर्षीय काल इंटरप्लूवियल पीरियड्स आए, जबकि अधिकांश झीलें सूख गईं। हिमयुगोत्तर काल पोस्ट ग्लेशियल पीरियड्स। हिमयुगोत्तर काल में आर्द्र तथा शुष्क जलवायु का प्रत्यावर्तन होता रहा, जो वृक्षों के तीव्र विकास तथा तदुपरांत उनके सूख जाने से स्पष्ट होता है। इस बात का प्रमाण पिट दलदलों के परिच्छेदों से मिलता है। शुष्क और वर्षाकाल के एकांतरण के संबंध में खोज का कार्य नॉर्वे के वैज्ञानिकों ब्लिट, एडमैन तथा गॉडविन ने किया। आर्द्र अटलांटिक काल के उपरांत उपबोरियल काल का आगमन हुआ, जो अपेक्षाकृत अधिक शीतल और शुष्क था। इस काल में लंबी अवधि का सूखा पड़ने से पिट दलदलों की सतहें सूख गईं। इस काल के पश्चात पुनः अधिक वर्षा वाला युग आया। इस बात से सभी सहमत हैं कि ईसा पूर्व 2200 से 1900, 1200 से 1000 तथा 700 से 500 वर्षों की अवधि में सूखा काल था। इनमें अंतिम सूखा काल इतना प्रचंड था कि वैज्ञानिकों ने इसे उष्णता लहर हीट वेव की संज्ञा प्रदान की। लगभग 2 शताब्दियों तक इस सूखा काल का प्रभाव पड़ता रहा। इस प्रकार की शुष्क जलवायु के परिणाम स्वरूप झीलों का विस्तार सिकुड़कर कम हो गया और अनेक स्थानों में शुष्क झीलों के नितल पर निकास आउटलेट के नीचे वृक्ष उग गए। आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में कुछ झीलों के भूवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विगत काल की वर्षा की कुल मात्रा का लगभग 50% वर्षा सूखा काल में हुई होगी। किंतु सूखे की भीषणता इतनी अधिक नहीं थी कि जंगलों के विकास में किसी प्रकार का व्यवधान पड़ सके। इस सूखे के कारण बहुत बड़े पैमाने पर जनसंख्या शुष्क क्षेत्रों से आर्द्र क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गई। अंतिम सूखा काल 500 वर्ष ईसा पूर्व समाप्त हो गया। तदुपरांत शीघ्र ही जलवायु में परिवर्तन हो गया। शीघ्र ही स्फेग्नम दलदलों का विकास हो गया और झीलों में बसी हुई बस्तियां जलमग्न हो गईं। इसे उप अटलांटिक काल कहा जाता है। यहां यह बता देना आवश्यक है कि उपर्युक्त निष्कर्ष अनेक अनुमानों पर आधारित हैं और उनकी यथार्थकता संदेह से परे नहीं है, किंतु पूरा जलवायु की दशाओं को ज्ञात करने की वैज्ञानिक तकनीकों के कारण उनकी संपुष्टि की काफी गुंजाइश है। इस संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि सच्चों का निर्णय करने में सक्षम वैज्ञानिक निष्कर्षों की जांच पड़ताल और उन पर अपना निर्णय देने में समर्थ नहीं है। दूसरी ओर जो लोग निष्कर्षों की यथार्थकता पर निर्णय देने में सक्षम हैं, वे लोग साक्ष्यों का सही सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्रिश्चियन युग में हुए जल परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज ड्यूरिंग द क्रिश्चियन इरा। क्रिश्चियन युग के प्रारंभ से ही जलवायु परिवर्तन के संबंध में विस्तृत एवं सही सही तिथियों सहित जानकारी के अभिलेख सुरक्षित रखे जाने लगे। एशिया महाद्वीप की पूरा जलवायु का महत्वपूर्ण संकेत कैस्पियन सागर के तल से मिलता है। एशिया तथा यूरोप में प्राप्त ऐतिहासिक अभिलेखों से सुदूर अतीत की जलवायु संबंधी जानकारी प्राप्त करने में काफी सहायता मिली। भारत तथा चीन से प्राप्त ऐसे अभिलेख विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। यूरोप के वैज्ञानिकों ने पिट दलदलों, झीलों के परिवर्तित तलों, हिमनदों के प्रसार तथा निर्वर्तन रिट्रीट आदि के अध्ययन द्वारा पूरा जलवायु दशाओं का पता लगाने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। ज्ञातव्य है कि धरातल यदि कभी हिमानी से आच्छादित रहा तो हिमानी के निर्वर्तन अथवा पिघल जाने पर उस धरातल पर हिमनदन के चिन्ह पाए जाते हैं। पूरा जलवायु की दशाओं का अनुमान लगाने के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत बस्तियों की स्थिति, साहित्यिक पत्रिकाएं तथा मौसम की पुरानी पत्रिकाएं हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में नील नदी के स्तर में गड़बड़ एवं नखलिस्तान के इतिहास से विगत काल की जलवायु का पता चलता है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में वार्षिक वृक्ष वलयों ट्री रिंग्स की चौड़ाई वर्षा की मात्रा को सही सही जानने में सहायक होती है। विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि क्रिश्चियन युग के प्रारंभ की जलवायु वर्तमान काल की जलवायु के लगभग समान थी। अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी भाग निश्चित रूप से कुछ अधिक आर्द्र था। आगे चलकर लगभग 400 ईस्वी के आसपास अपेक्षाकृत गर्म और शुष्क काल प्रारंभ हुआ। उस काल में कैस्पियन सागर का तल वर्तमान तल से काफी नीचा था। 700 ईस्वी के लगभग जलवायु का यह काल अपने शिखर पर था, जबकि आल्पस पर्वत के दर्रों से अधिक यात्रियों का आवागमन होने लगा था। इस काल में अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर में तूफानों का अभाव था, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप से समुद्री यातायात में वृद्धि हो गई। इस काल में सैंक्शन क्षेत्र के निचले भागों में बस्तियां बसाई गई और केल्टिक तथा नॉर्दम्बर संस्कृतियों का विकास हुआ। आयरलैंड की सभ्यता अपने उच्चतम शिखर को छू रही थी तथा केल्टिक गिरजाघरों से अन्य देशों को शिष्टमंडल भेजे गए। वास्तव में यही महान वाइकिंग युग था, जबकि सुदूर देशों के लिए समुद्री मार्गों से यात्राएं की गईं। आइसलैंड तथा ग्रीनलैंड का तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा होने के कारण वहां मानव अधिवास पाए जाते थे। इसी शुष्क काल में चीन में कई भयानक सूखा पड़े। नील नदी के जलस्तर के नीचा होने के साक्ष्य मिलते हैं। शुष्कता में वृद्धि के कारण उत्तरी अफ्रीका के नखलिस्तान में पाई जाने वाली बस्तियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जलवायु में पूरा परिवर्तनों का दौर शुरू हुआ। सन 1200 से 1400 ईस्वी के मध्य पश्चिमी यूरोप की जलवायु में अत्यधिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, जबकि वहां कई विनाशकारी बाढ़ और सूखा देखने को मिला। कभी कभी शीतकाल में कड़ाके की ठंड पड़ी तो कभी मौसम सामान्य रहा। इस काल में ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड के निकटवर्ती समुद्रों में ध्रुवीय हिम का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। ग्रीनलैंड के अधिकांश अधिवासों का समूल नाश हो गया। ग्रीनलैंड का बाहरी दुनिया से संबंध विच्छेद हो गया। यहां तक कि नॉर्थ स्टॉक के लोगों की लंबाई में कमी आ गई। सन 1200 के उपरांत पश्चिमी यूरोप में तूफानों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड का उत्तरी सागर तटीय तटवर्ती क्षेत्र कई बार जलमग्न हुआ। सन 1400 ईस्वी के लगभग वहां धरातल अस्थायी रूप से जम गया, जिसमें बहुत सारी बस्तियों का लोप हो गया। छोटा हिमयुग, लिटिल आइस एज। सन 1550 से 1850 तक, सन 1550 से 1850 तक की अवधि को छोटा हिमयुग कहा जाता है। इस कालावधि में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो गई। संपूर्ण विश्व में हिमनद पुनः अग्रसर होने लगे। सन 1780 और 1800 के मध्य ग्रीनलैंड से नॉर्वे के आधे से अधिक दूरी तक हिम का फैलाव हो गया। ज्ञातव्य है कि 13वीं शताब्दी में हिमनदों में जो प्रसार प्रारंभ हुआ, वह 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्ण रूप से रुक गया। पुनः लगभग 1600 ईस्वी तक हिमनद तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। यद्यपि आल्पस और आइसलैंड में अस्थायी तौर पर उनका अग्रसर होना बंद हो गया, किंतु पुनः सन 1750 ईस्वी के आसपास हिमनदों का सर्वाधिक विस्तार हो गया। प्लिस्टोसीनी हिमयुग की समाप्ति काल से लेकर आज तक हिमनदों का विस्तार इतना अधिक कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत हिमनद सामान्य रूप से पीछे हटते रहे हैं। वर्तमान युग जलवायु के यांत्रिक अभिलेखों का युग है, और इस प्रकार हम पूर्ववर्ती वर्णित जलवायु परिवर्तन के अंतिम चरण में निवास कर रहे हैं। जैसा कि हमें विदित है, वायुदाबमापी तथा तापमापी यंत्रों का आविष्कार सन 1643 ईस्वी में किया गया। सन 1676 से 1990 सन 1676 से 1690 ईस्वी की अवधि में वर्षा मापी रेन गेज का प्रयोग होने लगा। 18वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर, थर्मोमीटर तथा रेन गेज मौसम के मापन में उपलब्ध हो चुके थे। पहले मौसम संबंधी आंकड़ों के मापन के लिए भिन्न भिन्न देश विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते थे, किंतु इस समय सभी देशों में माप की समान इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक अभिलेखों तथा मौसम की डायरियों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पिछले 100 से 200 वर्षों में तापमान, वर्षा तथा मौसम के अन्य तत्वों में बहुत परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि 18वीं शताब्दी के तीसरे दशक और 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के मध्य संपूर्ण विश्व की जलवायु में सुधार हुआ। संभवतः यह प्रथम जलवायु परिवर्तन है जिसका मापन करना और मौसम मानचित्र पर आलेखन करना संभव है। वर्तमान काल की जलवायु मध्यकालीन उष्ण जलवायु के सदृश है। खोजों से पता लगा है कि दोनों गोलार्धों में लगभग सन 1800 से वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक तक सामान्य परिसंचरण जनरल सर्कुलेशन में तीव्रता रही है। इसके परिणाम स्वरूप आर्कटिक प्रदेश की हिमानी में तीव्र गति से कमी हुई है। वायुमंडल के परिसंचरण में तीव्रता का परिणाम यह हुआ है कि महासागरों के प्रभाव क्षेत्र में विशेष रूप से शीत ऋतु में विस्तार हुआ है। ऐसा बहुत कम होता है, जबकि महाद्वीपों के धरातल पर अत्यधिक न्यून तापमान अंकित किया जाता हो। इस प्रकार शीतकालीन तापमान प्रवणता टेम्परेचर ग्रेडियंट में कमी दिखाई पड़ती है। इसके विपरीत ग्रीष्मकालीन तापमान प्रवणता में निश्चित वृद्धि अंकित की जाती है। सन 1850 के उपरांत मौसम वैज्ञानिक अभिलेखों के अनुसार सभी ध्रुवीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में शीतकालीन तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है, किंतु वर्तमान शताब्दी के मध्य भाग से शीतकालीन तापमान में कुछ कमी आई है। क्रिश्चियन युग के प्रारंभ से जलवायु में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं जिनका आलेखन किया गया है। कैस्पियन सागर के तल में 45 फीट की गड़बड़ हुआ है। आल्पस पर्वत से हिमनदों का अनेक बार प्रसरण तथा निर्वर्तन हुआ। वृक्ष वलयों से ज्ञात होता है कि वृष्टि की अधिक मात्रा में अनेक बार परिवर्तन हुए। जलवायु परिवर्तन के सिद्धांत, थियरीज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या एवं विवेचना करने के उद्देश्य से पिछली शताब्दी में अनेक प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इन सिद्धांतों को स्थूल रूप से दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तनों के कारणों को अपार्थिव मानते हैं। दूसरे शब्दों में इस वर्ग के सिद्धांत जलवायु परिवर्तन के कारणों की खोज पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के बाहर करते हैं, किंतु कुछ अन्य प्रकार के सिद्धांत हैं जिनके अनुसार जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारण स्वयं पृथ्वी में ही है। इसके अनुसार पार्थिव कारणों से ही जलवायु में परिवर्तन होते हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों की एक विशिष्ट श्रेणी में ऐसे सिद्धांत भी हैं जिनके अनुसार मानवीय क्रियाओं को ही जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, किंतु ध्यान रहे कि ऐसे परिवर्तन आधुनिक वैज्ञानिक युग की देन है। दहन की प्रक्रियाओं कंबस्टन प्रोसेस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा के दुष्प्रभावों का परीक्षण करना, मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न धूल कणों के स्तर में वृद्धि आदि का विश्लेषण इस सिद्धांत के मुख्य आधार हैं। यहाँ पर जिन सिद्धांतों की विवेचना की गई है वे निम्नांकित हैं। पहला, खगोलीय सिद्धांत, एस्ट्रोनॉमिकल थियरीज। दूसरा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थियरीज। तीसरा, वायुमंडल के संगठन में परिवर्तन का सिद्धांत, थियरीज इन्वॉल्विंग ए चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर। चौथा, भौगोलिक सिद्धांत, ज्योग्राफिकल थियरीज। पांचवा, सौर विकिरण में परिवर्तन का सिद्धांत, थियरीज इन्वॉल्विंग ए चेंज इन सोलर रेडिएशन। पहला, खगोलीय सिद्धांत, एस्ट्रोनॉमिकल थियरीज, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, अतः पृथ्वी और सूर्य की सापेक्ष स्थिति में थोड़ा भी परिवर्तन सौर ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन ला देता है। पृथ्वी पर सौर विकिरण के मौसम वितरण को प्रभावित करने वाले तीन आवर्ती विचलन पीरियोडिक वेरिएशन हैं, जो पृथ्वी और सूर्य की आपेक्षिक स्थिति में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, पृथ्वी की धुरी के तिरछेपन में परिवर्तन तथा धुरी की डगमगाहट आदि हैं। यद्यपि वर्तमान मौसमी तापमान के घट बढ़ पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी का प्रभाव प्रायः नगण्य होता है, फिर भी इसके द्वारा जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन अवश्य होते हैं। 3 जनवरी को उपसौरिका पेरिहेलियंस की स्थिति में सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, जबकि 4 जुलाई को अपसौरिका की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। दूरी में इस प्रकार का अंतर 3% से अधिक नहीं होता। इस अंतर के फलस्वरूप पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा में 6% का अंतर पड़ता है, किंतु ऐसा सदैव नहीं होता है। वैज्ञानिकों की गणना अनुसार 90,000 से 1,00,000 वर्षों के चक्र में पृथ्वी की कक्षा के आकार में कुछ परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी पृथ्वी की कक्षा अधिक लंबे दीर्घवृत्त लॉन्गर एलिप्स का निर्माण करती है, तो कभी इसका आकार वृत्त के अधिक निकट होता है। पृथ्वी की कक्षा की अधिक उत्केंद्रता के समय पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की मात्रा अपसौरिका की अपेक्षा उपसौरिका के समय 20-30% तक अधिक होती है। सौर विकिरण की मात्रा में इस प्रकार के परिवर्तन का स्पष्ट अर्थ है कि वर्तमान जलवायु से सर्वथा भिन्न प्रकार की जलवायु का विकास होगा। पृथ्वी की धुरी और क्रांति वृत्त एक्लिप्टिक के बीच बने कोण में परिवर्तन के फलस्वरूप अयन रेखाओं तथा ध्रुव वृत्तों का विस्थापन हो जाता है। वर्तमान में पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री है, किंतु वैज्ञानिकों के मतानुसार इसमें भी परिवर्तन होता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 41,000 वर्षों के एक चक्र में अक्ष का झुकाव 22.1 डिग्री से 22.5 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तनों से शीत और ग्रीष्मकाल के तापांतरों में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। यदि उपयुक्त ऋतुओं के तापांतर में कमी हो जाती है, तो इसके फलस्वरूप हिम की चादरों की मोटाई एवं विस्तार में वृद्धि हो जाती है। शीतकालीन तापमान ऊंचा होने पर वायु में अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे अधिक हिमवृष्टि होती है। दूसरी ओर ग्रीष्मकालीन तापमान में कमी हो जाने पर हिम को पिघलने का पूर्ण अवसर मिल जाता है। इस प्रकार हिमचादरों का विकास होने लगता है। नाचते हुए लट्टू की तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते समय डगमगाने लगती है, जिससे बबलिंग कहा जाता है। इस समय पृथ्वी का अक्ष ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है, किंतु सन 14,000 ईस्वी तक वह वेगा नामक तारे की ओर इंगित करने लगेगा। उस समय वेगा ही ध्रुव तारे का स्थान लेगा। पृथ्वी के पुरस्सरण प्रेसेशन का काल 26,000 वर्षों का होता है, अतः ईस्वी सन 27,000 तक पोलरिस पुनः ध्रुव तारा हो जाएगा। पृथ्वी के अक्ष के चक्रीय डगमगाहट के कारण बहुत बड़े पैमाने पर जलवायु में परिवर्तन होता है। आज से 12,000 वर्षों के में वेगा तारे की ओर पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु अपसौरिका की स्थिति में और ग्रीष्म ऋतु उपसौरिका की स्थिति में होगा। स्मरणीय है कि वर्तमान में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। ऐसी स्थिति में आज की तुलना में ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म और शीत ऋतु अधिक सर्द होगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस खगोलीय कारक के कारण सूर्यातप की मात्रा में उत्पन्न अंतर नगण्य होता है। वास्तव में इसके कारण उत्पन्न ऋतुओं के सामान्य तापमान का अंतर प्रत्यक्ष रूप से विशेष महत्वपूर्ण होता है। मिलेंकोविच द्वारा प्रतिपादित खगोलीय सिद्धांत कभी बड़ा लोकप्रिय हुआ था तो कभी इसको गलत कहा गया, किंतु आधुनिक अनुसंधानों के फलस्वरूप इस सिद्धांत को पुनः मान्यता प्रदान की गई। गहरे समुद्रों के नितल पर पाए जाने वाले अवसादों के अध्ययन से इस सिद्धांत को विशेष समर्थन मिला। ऑक्सीजन आइसोटोप विश्लेषण की तकनीक के प्रयोग द्वारा विगत 4.50 लाख वर्षों से हुए तापमान परिवर्तन का कालानुक्रम निर्धारित किया गया। उत्केंद्रता, तिर्यकता तथा पुरस्सरण की खगोलीय गणना की तुलना जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के अनुक्रम से करके उनमें सहसंबंध निश्चित किया गया। इस प्रकार उनमें सहसंबंध की पुष्टि हो गई। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिखाया कि उपर्युक्त खगोलीय कारकों का जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान है। यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि पृथ्वी की कक्षीय ज्यामिति ऑर्बिटल जियोमेट्री में होने वाले परिवर्तन ही चतुर्थ महाकल्प के हिमयुगों के मुख्य कारण है। प्लेट विवर्तनक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत की संपुष्टि होती है। महाद्वीपों के विस्थापन संबंधी सिद्धांत कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थियरीज महाद्वीपों के विस्थापन पर आधारित सिद्धांत यह मानकर प्रतिपादित किए गए हैं कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व विश्व के सभी महाद्वीप परस्पर मिले हुए थे। इस अति विशालकाय महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता है। यह उच्च अक्षांशों में वर्तमान महाद्वीपों की स्थिति से सुदूर दक्षिण में स्थित माना जाता है। यद्यपि इस विशाल महाद्वीप का केंद्र भाग भूमध्य रेखा पर माना जाता है, किंतु इसका धुरी दक्षिणी भाग दक्षिण ध्रुव तक विस्तृत था। कालांतर में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से इस विस्तृत भूखंड में दरारें पड़ गईं और धीरे धीरे यह खंड कई खंडों में विभक्त हो गया। उन्हीं अलग अलग स्थलखंडों से वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अंटार्कटिक महाद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया से टूटकर अलग हो गया था, धीरे धीरे खिसक कर दक्षिण की ओर अपनी वर्तमान स्थिति में दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर आ गया। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया उत्तरी ध्रुव की ओर सरक गए। ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिक तथा ऑस्ट्रेलिया में हिमनदन ग्लेशिएशन के निशान पाए जाते हैं और ये सभी भूखंड दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में स्थित थे। इस परिकल्पना को वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। इस परिकल्पना से भूगर्भ विज्ञान, जीवाश्मिकी पैलेंटियोलॉजी तथा जलवायु विज्ञान की अनेक समस्याओं का समाधान हो गया। महाद्वीपीय प्रवाह के कारण भारी पैमाने पर तापमान में परिवर्तन हुआ होगा। यद्यपि पृथ्वी की सामान्य जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन भले ही न हुआ हो, किंतु यह सिद्धांत भूगर्भ विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। ऐसी किसी शक्ति का पता नहीं चल सका जो पृथ्वी की प्रारंभिक हल्की परतों को एक साथ बांध रखने में सक्षम हो। इस प्रकार भूवैज्ञानिकों को किसी ऐसे बल का पता नहीं चल सका जिसके द्वारा पेंजिया जैसा अति विशाल भूखंड को तोड़कर उसके विभिन्न घटकों को उनकी वर्तमान स्थिति में पहुंचाया जा सकता हो। अतः चार हिमयुगों तथा चार अंतर हिमानी युगों के अपेक्षित संचलन की मात्रा का प्रश्न ही नहीं उठता। कालांतर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किया गया, जिसके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी के ऊपरी भाग का निर्माण छह मुख्य तथा अन्य गौण प्लेटों से हुआ माना जाता है। इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान की और इसके साथ ही महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संबंध में उत्पन्न अनेक भ्रांतियों का निराकरण भी हो गया और उसे पुनः मान्यता प्राप्त हुई। भूपर्पटी का निर्माण करने वाली विभिन्न प्लेटें अपने नीचे आंशिक रूप से पिघले हुए भाग पर गतिशील होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रशांत महासागर बेसिन के अलावा अन्य सभी प्लेटों का निर्माण महाद्वीपीय एवं महासागरीय पटलों से हुआ है। इन्हीं प्लेटों के गतिशील होने के फलस्वरूप महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव आता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और भारत में पाई जाने वाली हिमानीकृत स्थलाकृतियां इन भूभागों की वर्तमान जलवायु की दशाओं से मेल नहीं खाती। इन स्थलाकृतियों से इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि भूवैज्ञानिक अतीत में इन स्थलखंडों में अवश्य ही हिमयुग रहा होगा। आज सभी वैज्ञानिक इस तथ्य को स्वीकार करने में एकमत हैं कि लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले इन क्षेत्रों में हिमयुग रहा होगा। वर्तमान काल में यह विश्वास करना कितना कठिन है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हिम स्थित इन क्षेत्रों की जलवायु कभी ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिक की जलवायु के समान रही होगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हिमानीकृत स्थलाकृतियों वाले उपर्युक्त सभी क्षेत्र एक दूसरे से संबद्ध थे और उस विशाल भूखंड का नाम था पेंजिया। यह विशाल भूखंड अपने घटकों की वर्तमान स्थिति से काफी दूर दक्षिण में स्थित था। कालांतर में इस भूखंड के कई टुकड़े हो गए, जो अलग अलग प्लेटों पर खिसकते हुए अपनी अपनी वर्तमान स्थितियों में आ गए। भूविज्ञान से निकाला गया यह क्रांतिकारी सिद्धांत इस पहेली को सुलझाने में पूर्ण रूप से सक्षम हुआ कि किस प्रकार ये हिमनदित भूभाग ग्लेशिएटेड टेरेंस अपनी बिखरी हुई उपोष्ण कटिबंधी स्थितियों में पहुंच गए। आज भूवैज्ञानिक तथा अन्य वैज्ञानिक इस पर विश्वास करते हैं कि अति प्राचीन काल में महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप अनेक प्रकार के जलवायु परिवर्तन हुए होंगे। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप महासागरीय संचार प्रणाली में आमूल परिवर्तन हो गए और इसके कारण उष्मा और आर्द्रता के स्थानांतरण प्रतिरूप में भी उसी के अनुरूप बदलाव आया होगा। भूपर्पटी का निर्माण करने वाली ये प्लेटें अत्यधिक मंद गति से आगे बढ़ती हैं। महाद्वीपों की स्थितियों में परिवर्तन होने में इसी कारण करोड़ों वर्ष लग जाया करते हैं। यही कारण है कि दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनों में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरे शब्दों में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जलवायु के दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण ढंग से सहायक सिद्ध हुआ, किंतु सैकड़ों हजारों वर्षों की अवधि में होने वाले जलवायु के अल्पकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करने में यह सिद्धांत सक्षम नहीं है। इन अल्पकालीन जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए अन्य सिद्धांतों की आवश्यकता का अनुभव किया गया। वायुमंडलीय संगठन में परिवर्तन संबंधी सिद्धांत थियरीज इन्वॉल्विंग ए चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर। इस वर्ग में कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत तथा ज्वालामुखी धूल सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि अथवा ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल एवं राख आदि की मात्रा की अधिकता के परिणाम स्वरूप वायुमंडल के उष्मारोधी प्रभाव इंसुलेटिंग इफेक्ट्स में परिवर्तन आ जाता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत। जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में टीसी चैम्बरलेन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में परिवर्तन से विश्व स्तर पर जलवायु में परिवर्तन होता है। इस गैस की मुख्य विशेषता यह है कि लघु तरंगों में धरातल की ओर आने वाले सौर विकिरण के लिए यह पारदर्शी होता है, किंतु बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण का इसमें अवशोषण हो जाता है। पार्थिव विकिरण के अवशोषित भाग का पृथ्वी की ओर पुनर्विकिरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प दोनों ही उष्मा के महत्वपूर्ण अवशोषक हैं, अतः इनके द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स उत्पन्न होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में होने वाला किसी प्रकार का परिवर्तन वायुमंडल के निचले भाग में तापमान में परिवर्तन ला देता है। आधुनिक युग में उद्योग धंधों में अप्रत्याशित गति से वृद्धि हुई है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भारी मात्रा पहुंच गई है। इस गैस को आंशिक रूप से वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग में लाती हैं और इसका कुछ भाग महासागरीय जल में घुल जाता है। फिर इसका 50% भाग वायुमंडल में उपस्थित रहता है। ऐसा अनुमान है कि सन 1860 तथा 1970 के बीच वायुमंडल में इस गैस की मात्रा में 10% की वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप इस अवधि में वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होना स्वाभाविक है, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि विश्व के वायुमंडलीय तापमान में 20वीं शताब्दी के चौथे दशक के मध्य भाग तक ही वृद्धि अंकित की गई। इसके उसके उपरांत वायुमंडलीय तापमान में क्रमिक ह्रास अंकित किया गया। इसके विपरीत कुछ भूवैज्ञानिकों का मत है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में तापमान में और अधिक कमी होती है।